संतों का स्वागत है आज के गीतामृत कार्यक्रम में। कर्मयोग की व्याख्या जिसके अंदर भगवान कर्म के साथ साथ या कर्म को यज्ञ कहते हुए हमें समझा रहे हैं कि जो हमारा रोज का जीवन है हम कैसे उसे यज्ञ में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात जो हमारे नियत कर्म हैं और जो हमारे शरीर निर्वाह के लिए आवश्यकताएं हैं, बेसिक नेसेसिटीज, इनके संदर्भ में, इनके कॉम्बिनेशन में हम कैसे अपने जीवन को एक यज्ञ बना सकते हैं जिसके द्वारा हम यज्ञपति या यज्ञेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। तो पिछले हफ्ते हमने इस अध्याय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक लिया था, यज्ञ शिष्टाशिन संत मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै, जिसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि यज्ञ शिष्ट का अर्थ क्या है। तो दो अर्थ हमारे आचार्य प्रस्तुत करते हैं, भगवान के द्वारा छका हुआ भोजन और भगवान के द्वारा निर्धारित भोजन। तो हमने समझा पिछली बार काफी हमारा फूड हैबिट्स के ऊपर लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ कि हम मनुष्यों के लिए एक साधारण सी क्रिया, कौन सी, खाने की, एक साधारण सी क्रिया खाने की, उसके पीछे भगवान ने कितने प्रिसाइस नियम दिए। तो इसमें ये समझ में नहीं, ये हमें नहीं समझना चाहिए कि क्या भगवान और ये शास्त्र हमें बाधित कर रहे हैं, बंधन में डाल रहे हैं। नहीं, इन नियमों के द्वारा भगवान और शास्त्र वो हमें सुसंस्कृत बना रहे हैं। द स्क्रिप्चर्स आर सिंपली मेकिंग अस सिविलाइज्ड। वो क्या कह रहे हैं कि इतने जो अनगिनत योनियां हैं, 84 लाख योनियों में हम जो मनुष्य हैं और हम अपने आप को जो इतना श्रेष्ठ कहते हैं, मानते हैं, तो क्या हम बाकी प्राणियों की तुलना में उतने श्रेष्ठ आचरण कर रहे हैं कि नहीं। और श्रेष्ठ आचरण करने के लिए शास्त्र जो है वो हमें नियमावली देते हैं। तो केवल इतना ही नहीं था 3.13 में जब भगवान ने कहा कि यज्ञ शिष्ट जो कि हमारे सारे किल्बिश, किल्बिश का अर्थ क्या, हमारे सारे पाप, मुच्यन्ते, मुच्यन्ते सर्व किल्बिषै, हमारे जितने सारे पाप अनगिनत, अनगिनत तो खैर अलग अलग कर्मों से, परंतु विशेष रूप से वो पाप जो केवल खाने के वजह से हो रहे हैं, हमारे गलत खाना, गलत तरीके से खाना और बिना उसे भगवान को अर्पित, तो फिर जो दूसरा भाग था 3.13 का दूसरा भाग क्या था कि जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, जो केवल भोग प्रवृत्ति में उस अन्न को, भोजन को खाते हैं, तो वो केवल हरेक घास में क्या खा रहे हैं, पाप। तब फिर भगवान को ये अन्न अर्पित करना, ये भोजन अर्पित करना, भोग अर्पित करना, तो वो यज्ञ शिष्ट बनता है। तो यदि हम 3.13 को और संक्षिप्त रूप में समझें तो भगवान हमें बता रहे हैं, इट इज अ वे टू से थैंक यू टू कृष्ण। इन सिंपल वर्ड्स, नथिंग कैन बी मोर सिंपलर देन दिस. जैसे अगर कोई हमें कुछ देता है, भेंट देता है, तो एक कर्टिसी, एक जो सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग है उसके मुंह से क्या निकलता है, स्पॉन्टेनियसली क्या निकलना चाहिए, थैंक यू, है कि नहीं. अब कितने सारे अलग अलग धर्मों को भी आप लीजिए, उसमें भी वो लोग कम से कम खाने से पहले प्रेयर बोलते. अब मुझे याद है बचपन में तो हमको ये सब कुछ इतने संस्कार सिखाए नहीं थे, तो हमारी एक मैथमेटिक्स की टीचर थी मिसेस मार्गरेट, क्रिश्चियन थी वो. तो क्रिश्चियंस में आप देखोगे वो लोग डाइनिंग टेबल पर जब बैठते हैं तो वो लोग, उनके एक प्रेयर होती है, और वो प्रेयर होती क्या है, ओ लॉर्ड दाउ आर्ट इन हेवन, वी थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस डेली ब्रेड, यू नो, हैलोड बी योर नेम, ऐसे इस प्रकार से उनकी प्रेयर्स होती. तो ये मिसेस मार्गरेट हमसे पूछी, पूरे क्लास से पूछी, डू यू ऑल प्रे बिफोर यू ईट. अब इसका मैथमेटिक्स से कोई संबंध नहीं था, लेकिन ऐसे ही उन्होंने पूछा. तो अब अज्ञानवश मैंने आंसर दिया, मैंने कहा नो मैम, माय मदर इज अ गुड कुक. तो उस समय बचपन में मुझे क्या समझा कि प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो जो बनाया है वो एडिबल है कि नहीं, खाने लायक है कि नहीं. तो केवल इसलिए हमें थैंक यू नहीं बोलना है कि आज हमारे प्लेट में हमारे माता पिता ने या जो भी घर वालों ने, परिवार वालों ने आज का भोजन प्रसाद, पता नहीं भोजन प्रसाद तो इस्कॉन में आने के बाद समझ में आया. अभी भी मुझे याद है, और बहुतों को ये बात याद रहती है, कि पहली बार जब इस्कॉन में आते हैं और कोई कहता है, मुझे तो बॉम्बे में एक ब्रह्मचारी जब पहली बार मैं गया तो बोले कि रुके रुके, आपके लिए प्रसाद लेके आते हैं, जाइए मत. तो फिर मैं वेट कर रहा था, वो आए पूरा प्लेट बना के लेके आए, तो मुझे लगा उसमें से मुझे कुछ उठाना है, स्वीट उठाना है. तो मैं स्वीट तो कुछ दिख नहीं रहा था, जनरली प्रसाद क्या होता है, हमारा सत्यनारायण का प्रसाद होता ना, इतना सा वो हलवा दे देते या फिर पेड़ा. हमारे बचपन में वो बाल विहार की क्लासेस होती थी, तो उसमें हम जाते थे हर गुरुवार को, तो विशेष रूप से पेड़ा मिलता था उसके लिए जाते थे. उसके पहले फिर जितने भजन कीर्तन ये सब कुछ जो भी करना पड़ता था, लेकिन लास्ट में वो पेड़ा मिलता था. और वो पेड़ा ऐसा होता था, पता नहीं कहां से लाते थे, कहीं मार्केट में भी नहीं मिलता था, तो उसके लिए पूरे हफ्ते भर वेट करना पड़ता था. नहीं तो हम लोगों की आइडिया क्या थी कि अरे भाई वो इतना सब एक घंटे का भजन कीर्तन कौन करे, अगर पेड़ा मार्केट में मिल जाए तो फिर हफ्ते भर हम खाली गुरुवार को क्यों वेट करें. तो प्रसाद का कंसेप्शन क्या था, आप लोग एग्री करेंगे कि इतना सा कुछ स्वीट बस, लेकिन वो प्लेट लेके आ गए, तो मैं ढूंढ रहा हूँ स्वीट तो किधर है नहीं इसमें से. तो उन्होंने कहा नहीं नहीं पूरी प्लेट आपके लिए. मैंने कहा ये प्रसाद है, हाँ इसको भोजन प्रसाद बोलते. फिर उन्होंने पूरा उसका साइंस समझाया कि प्रसाद का मतलब क्या होता है. तो जब हम ऐसे श्लोक का अध्ययन करते हैं, इसे पिछले हफ्ते हमने किया, जिसमें भगवान हमें बहुत ही एक सिंपल सरल तरीके से बता रहे हैं, कह रहे भाई एक सुशिक्षित और सुसंस्कृत व्यक्ति बनो, कि जो प्रकृति, भगवान ये भी नहीं बोल रहे हैं कि वो प्रोवाइड करें, बोल रहे हैं जो प्रकृति इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड कर कर दे रही, बिना हम कष्ट किए ये सब फल सब्जियां अन्न इत्यादि प्रकृति हमको प्रोवाइड कर कर दे, तो कम से कम हमारे अंदर इतनी तो जो कहते हैं इंसानियत होनी चाहिए, बोलते ना, इतनी तो इंसानियत होनी चाहिए, इंसान कहलाते अपने आप को। तो इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि हम एक्नॉलेज करें, एक्नॉलेजमेंट होता है ना, मनी ऑर्डर मिलता है तो एक्नॉलेज करना पड़ता है ना कि हाँ मिल गया। तो ये एक्नॉलेजमेंट है कि हम भगवान को वो अर्पित करते हैं। तो 3.13 और आज का श्लोक भी संक्षिप्त रूप में है क्या, वे टू से थैंक यू टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड फॉर द बाउंटिफुल गिफ्ट्स एंड बेनिफिट्स विच ही हैज बीन गिवन गिविंग अस सिंस टाइम इमेमोरियल। तो अब आज का श्लोक हम लेते हैं जिसमें भगवान पिछले श्लोक से ही संबंधित और कुछ विशेष ज्ञान दे रहे हैं। आज के श्लोक में विशेष ज्ञान है अन्न के संदर्भ में, अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। तो पहली लाइन में भगवान कह रहे हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि, जितने हम जीव भूत हैं हम सब के लिए भगवान ने अन्न प्रस्तुत कर दिया। तो भगवान कह रहे हैं कि वो अन्न से ही हम जीवित रहते हैं, हम सब जीव भूतात्मा। तो अन्नाद भवन्ति भूतानि, और फिर ये प्रश्न उठता है कि तो फिर ये अन्न कहां से आता है। फिर भगवान कहते हैं पर्जन्य अन्न संभव, पर्जन्य बारिश को कहते हैं, तो बारिश की वजह से अन्न। और फिर अगला प्रश्न तो बारिश कहां से, यज्ञात भवति पर्जन्यो, यज्ञ करने से पर्जन्य बारिश आती है। और वो यज्ञ भगवान बहुत ही विशेष तरीके से बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन तुम यज्ञ कुंड लेके मत बैठ जाना यहां पर कुरुक्षेत्र की रणभूमि। वो यज्ञ क्या है, यज्ञ कर्म समुद्भव, अपनी नियत कर्म करना वो यज्ञ। तो बहुत ही एक और प्रिसाइज और परफेक्ट श्लोक भगवान के द्वारा कहा गया। तो शिल प्रभुपाद का अनुवाद इस प्रकार से है, सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले हम लेंगे कि आज के श्लोक में भगवान ने अन्न पर विशेषता की है। तो अन्न का महत्व क्या है, अब भारत में देखिए हम लोग अन्न को कितना ऊंचा मानते, पूजा होती है अन्न की। जैसे आजकल तो पता नहीं कई प्रांतों में जैसे उड़पी वगैरह ऐसे जगहों पर मैंने सुना है कि अभी भी है कि वहां पर जब फसल को काटते हैं साल में तो जो फसल अब आई है चाहे वो गेहूं हो या चावल हो या कोई भी अन्न हो तो उसे जितने किसान वो सारी उनकी उपज वो फसल को जो उड़पी कृष्ण हैं उनको लाकर अर्पित करते हैं, उनको लाकर ऑफर करते हैं। और फिर उसके बाद वहां से जो कुछ उन्हें आवश्यक है, जितना अन्न उनको आवश्यक है, वो भगवान उडुपी कृष्ण का महाप्रसाद के रूप में उनको दिया जाता है। तो इसमें वो लोग उडुपी कृष्ण के साथ जो अब अन्न का उनका महाप्रसाद मिला है उसको भी वो पूजते हैं। इसलिए अन्न देवता, अन्न को देवता कहा गया है कि वो एक देवता के रूप में हमें जिला रहे हैं। अब अन्न वो पूजनीय कब बनते हैं, जैसे कि आज के श्लोक में भगवान ने बताया कि अन्न की उपज ही यज्ञ से होती है, और यज्ञ क्या है, भगवान को संतुष्ट करना। तो यदि हमें लगे कि अरे भाई जहां कहीं पर भी अन्न है क्या वो पूजनीय हो जाएगा, या केवल भगवान को अर्पित अन्न पूजनीय होता है, नहीं, जहां कहीं पर भी अन्न है ये समझना है आज के श्लोक से कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार के यज्ञ से ही उत्पन्न हुआ है, क्योंकि वर्षा से उत्पन्न हुआ, और वर्षा आज के श्लोक के अनुसार यज्ञ से उत्पन्न। तो इसलिए हम जो भारत में हैं, हमें ये अन्न का महत्व बहुत अच्छी तरीके से जानना चाहिए। तो आज के श्लोक की शुरुआत भगवान ने की है, अन्नाद भवन्ति भूतानि, अन्न से ही समस्त प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये एक गौर करने लायक बात है कि भगवान यहां पर कह रहे हैं कि उत्पन्न हो रहे हैं। अब इसमें हम सबसे पहले गौर करेंगे जो हाईलाइट किया है वर्ड को, भूतानी। तो भूतानी का अर्थ क्या है? भूतानी शब्द विशेष रूप से मनुष्यों के लिए भगवान ने इस्तेमाल किया, हालांकि अनुवाद में क्या है, सर्व प्रकार के प्राणी। तो हाँ, सब प्रकार के प्राणी को अन्न जिलाता है, लेकिन भगवान का फोकस वो भूतानी शब्द से हम मनुष्यों के ऊपर सबसे ज्यादा, क्योंकि भगवद गीता सुनाई हम मनुष्यों के लिए, लेकिन इसमें जो डिटेल्स भगवान दे रहे हैं कि अन्न खाना और अन्न की उत्पत्ति और हमारा संबंध, हम मनुष्यों का संबंध अन्न से क्या है। तो यदि हम ये समझे कि भूतानी शब्द मनुष्यों से संबंधित है, तो देखिए संस्कार में, बचपन में जो संस्कार होने चाहिए मनुष्यों के, उसकी शुरुआत कहां से होती है? अन्न प्राशन संस्कार। तो जब शिशु छोटा सा होता है तब वो अपनी मां के दूध पर जीता है, लेकिन उतना ही काफी नहीं उस शिशु को। उस समय उसका शरीर इस प्रकार से बनाया गया है कि वो केवल अपने मां के दूध पर ही 24 घंटा और कितने महीने जी सकता है, मेरे ख्याल से कितना, 6 महीना, 1 साल तक जीता ना, 6 महीना। अब उसके बाद ये जो संस्कार है अन्न प्राशन विधि, कि अन्न का प्राशन, और वो कौन सा, जैसे हमारे भक्त, जब भक्त समुदाय में कोई शिशु पैदा होता है तो उसे भगवान का महाप्रसाद का अन्न, स्वीट राइस वगैरह खिलाते हैं। तो ये जो अन्न प्राशन संस्कार की जो विधि है, इससे समझ में आ रहा है कि उस छोटे से शिशु को बचपन से उस अन्न के द्वारा, उसकी चेतना में भगवान की चेतना अन्न के द्वारा हम परिणित कर रहे हैं। तो अब देखिए, जानवरों में अन्न प्राशन संस्कार नहीं होता। यहां पे हम लोग किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि भूतानी शब्द मनुष्यों के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया है आज के श्लोक। तो कभी आपने देखा कि कुत्ते का अन्नप्राशन संस्कार हुआ है? ये जानवर का अन्न प्राशन नहीं, अन्न प्राशन संस्कार जो बताया गया है, संस्कार केवल मनुष्यों के लिए निर्धारित है। और दूसरा कारण, अन्न की आवश्यकता सबसे ज्यादा हम मनुष्यों को है। बहुत से प्राणी हैं, अभी जैसे ये शेर, चीता, सिंह इत्यादि, ये कभी अन्न नहीं खाते, जीवन भर केवल मांस खाएंगे और उस पर जिएंगे। इसलिए पिछली बार जो हमने डिस्कशन किया था मांसाहार के ऊपर, तो उसमें एक और ये पॉइंट है कि ये जो हमारा शरीर है, ये मांसाहार भोजन के लिए बनाया नहीं गया है। जो हमारी आंतड़ियां हैं इतनी लंबी हैं कि जो मांस जब कोई खाता है तो वो वहीं पे अटक जाते हैं। और ये जो मांसाहारी प्राणी होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स जिसको बोलते हैं, उनकी आंतड़ियां इतनी छोटी होती हैं कि वो तुरंत डाइजेस्ट होके फ्लश आउट हो जाते हैं सिस्टम से मांस। और है कि हमारे शरीर को या डाइजेस्टिव सिस्टम को अन्न ही निर्धारित खाद्य पदार्थ है जो सही रूप से वो पच पाता है और हमें पौष्टिकता देता है। लेकिन साथ में प्रॉब्लम क्या है मनुष्यों में, कि मनुष्यों को जो दिमाग दिया है प्रकृति ने, ये जो दिमाग है ना, ये दिमाग का सदुपयोग जब वो करता है तो आज के श्लोक में यज्ञ में स्थित रहता है, लेकिन जब इसका दुरुपयोग करता है तो वो क्या करता है। अब जैसे पिछले हफ्ते जो हमने श्लोक लिया था, उसमें हम देखते हैं कि मनुष्यों ने जानवर के मांस को खाने के लिए दिमाग लगाया। जानवरों को जानवर का मांस खाने के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उनको प्रकृति ने शरीर ऐसा दिया। अब जो शेर है, उसके पंजे, उसके दांत, उसका पूरा भरकम शरीर, वो इस प्रकार से दिया है कि उसको कोई चाकू वाकू की जरूरत नहीं पड़ती, उसको कोई कसाई खाने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा नहीं कि शेर ने हिरण को पकड़ा और कसाई के पास ले गया, थोड़ा उसको काट के देना। अच्छा, उतना ही नहीं, ये नहीं कि फिर वो शेरनी को जाके बोलता थोड़ा इसको अच्छा ग्रेवी वेवी से पकाओ। एक आदमी मछली पकड़ रहा था, तो बहुत टाइम हो गया मछली नहीं मिल रही, मछली नहीं मिल रही, तो वो गया रोटी लेके आया और वो फिर नदी में डुबो डुबो के खा रहा है। तो एक ने पूछा कि तो नदी में डुबो डुबो के क्यों खा रहा है, बोला फिश नहीं सही, ग्रेवी सही। तो शेर वो कभी वो उसको पका के नहीं खाता है, ऐसे ही कच्चा मांस खाएगा। अब जो मनुष्य खाते हैं उनको दो कच्चा मांस, वो एक दिन में, चाहे नाम भी उसका शमशेर होगा, एक दिन में खत्म हो जाएगा वो। तो मनुष्य क्या करता है कि उसको अच्छी से पकाएगा, उसमें मसाले डालेगा, तड़का डालेगा, ये वो, और फिर उसको अन्न के साथ खाएगा। अन्न उसके साथ होना चाहिए, तो अन्न का महत्व वहां पर भी कितना हो रहा है, देखिए बिना अन्न के नहीं। तो ये जो बाकी प्राणी हैं, इनको अन्न खाने की आवश्यकता नहीं है, बिना अन्न के ये जी रहे हैं अपना जीवन। लेकिन मनुष्य वो बिना अन्न के, चाहे वो मांसाहारी क्यों ना हो, लेकिन अन्न आवश्यक है उसको, बिना अन्न के हम जी नहीं पाएंगे। तो इसलिए जब भगवान ने अन्नाद भवंती भूतानि कहा है, तो तुरंत मान लीजिए कि इतने 84 लाख योनियां हैं, वो श्लोक सुन रहे हैं भगवान का, तो बाकी जो 80 लाख हैं वो लोग तो भगवान को, हाँ हाँ हमको क्या मतलब है अन्न से, चलो चलते हैं, हमारे लिए श्लोक नहीं। तो मनुष्य जो हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अन्न की जो आवश्यकता है। इसलिए देखिए, अन्न की जो उपज है, जैसे कि किसान, तो ये बताया गया है कि जैसे एक शेर मेहनत करता है वो एक हिरण को पकड़ने में, वैसे ही किसान मेहनत करता है अन्न को उगाने में। तो मनुष्यों की जो मेहनत है वो कहां लगनी चाहिए? अन्न को उगाने के लिए। ये नहीं कतल खाना कसाई खाना बना रखा है बड़ा बड़ा और उसके अंदर अपनी शक्ति डाल रहे हैं, वो हम प्रकृति के नियम के विरुद्ध जा रहे हैं। और फिर उसके परिणाम कितने सारे हमने पिछली बार सुने, इकोलॉजिकल डैमेज, फिर वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, कितना पोल्यूशन अलग अलग तरीके से कर, ये तो हो ही रहा है, शरीर का तो हो ही रहा है, लेकिन इससे संबंधित प्रकृति है उसको कितना हम दूषित कर रहे हैं। तो भूतानी मनुष्यों के लिए जो भगवान कह रहे हैं, ये दो सबसे पहले कारण है। अब ये ध्यान से आप सुनिएगा कि कलयुग में अन्न का महत्व क्या बताया। तो इसे समझने के लिए हमें जो पिछले तीन युग हैं उनको समझना हो। तो जो सतयुग, सतयुग में जो मनुष्य हुआ करते थे वो इतने स्वस्थ हुआ करते थे कि वो यदि केवल फल या सब्जी खा लें तो उसमें उसके द्वारा वो अपने प्राण अपने अंदर बनाए रखते थे। सतयुग के लोग, सतयुग के लोगों को अन्न भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यहां पर यह बताया गया कि अन्न विशेष रूप से हम कलयुग वासियों के लिए ही है। तो शास्त्र कहता है कि सतयुग में जो तपस्वी हुआ करते थे मनुष्य, वो अपने प्राणों को अपने हड्डी में बंद कर रख सकते थे। इसलिए सतयुग के लोगों को कहा जाता था जिनके अस्थिगत प्राण है, अस्थियां समझते हैं ना, जैसे मरने के बाद अस्थियां विसर्जन करते हैं, तो सतयुग के जो लोग वो अपने प्राण अपने हड्डियों में बनाकर रख सकते थे केवल फल और सब्जी खाकर। त्रेता युग में हड्डी के अंदर जो मज्जा होती है जिसको क्या कहते हैं, मैरो, बोन मैरो, तो उसके अंदर वो प्राण अपने थोड़ा सा स्वास्थ्य में ये हो गया, डिप्लीशन हो गया त्रेता युग में। तो हड्डी के बजाय जो अंदर की मज्जा है उसके अंदर वो प्राण को बनाए रखते थे। इसलिए त्रेता युग के जो मनुष्य, उनके विषय में बताया गया है कि मज्जागत प्राण उनके होते हैं, जिनके प्राण मज्जा में स्थित कर रखते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु का उदाहरण सतयुग का है कि हिरण्यकशिपु ने उसका पूरा मांस वगैरह सब खा लिया था चींटियों ने और जीव जंतु ने, कितने साल तपस्या कर रहा था हिरण्यकशिपु, तो उसने अपने प्राण हड्डियों में अंदर समा के रखे हुए थे हिरण्यकशिपु ने, केवल उसका वो कंकाल बच गया था। अब द्वापर युग में रक्त, तो इसलिए द्वापर युग के जो लोग उनके विषय में बताया गया है रक्तगढ़ रक्तगत प्राण। लेकिन कलयुग में हम लोग बिना अन्न के ये प्राण चलेंगे ही नहीं, खत्म हो जाएगा बिना अन्न के प्राण। इसलिए कलयुग के जीवों को विशेष रूप से मनुष्यों को बताया गया है कि हमारे प्राण कहां पर है, अन्नगत प्राण वहां पर स्थित है। तो यहां से समझ में आ रहा है कि मनुष्यों में और मनुष्यों में जो मनुष्य कलयुग में, मतलब हम लोग सब, तो भगवान कह रहे हैं। तो इसमें एक और मुद्दा समझ में क्या आ रहा है कि भगवद गीता विशेष रूप से भगवान ने आज के श्लोक के द्वारा क्या समझ में आ रहा है, किसके लिए सुनाई, हम लोगों के, कलयुग वासियों के लिए। क्योंकि यही अन्नाद भुवंती भूतानि, सतयुग में अगर भगवान कहते तो लोग, हम लोग तो अस्थिगत प्राण वाले हैं। तो यहां से यह भी समझ में आ रहा है कि क्योंकि एंड ऑफ द्वापर युग है, द्वापर युग अब खत्म होने वाला है, तो इसलिए भगवान ने सोचा कि आने वाले इस कलयुग के जो लोग होंगे वो हर प्रकार से मंद है, वो उनकी आयु मंद है, बुद्धि मंद है, स्मृति मंद है, सब कुछ मंद है, इसलिए उनको स्पून फीडिंग बोलते हैं ना, इसलिए अन्न का स्पून फीडिंग। और वो अन्न कैसे, ये न के न प्रकार है ना, आज के श्लोक में भगवान हम कलयुग वासियों को कैसे तो यज्ञ में लगा रहे क्योंकि क्या होता है कि जैसे पिछले युगों में उनको बोल देते थे कि यज्ञ करना है तो यज्ञ करते थे, हमें ये बताना आवश्यक है कि यज्ञ के बिना खाना नहीं मिलेगा, चलो 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 तब जाकर हम लोग करेंगे। तो जब तक हमें वो प्रलोभन नहीं दिया जाए, आज के श्लोक में जो प्रलोभन दिया है, तब तक हम में से कोई यज्ञ में नहीं लगने वाला। खैर इतना सुनने के बाद भी लोगों को लगता है कि चलो क्या मिल तो रहा है ना, बाकी लोग कर रहे हैं यज्ञ, उसमें मिल रहा है, बारिश हो रही है, सब जगह हो रही है, तो हमको भी मिल रहा है ना, ये अन्न मिल रहा है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो ये समझना आवश्यक है कि हम कलयुग के जो निवासी हैं, हमारा स्वरूप क्या है। अब ये जो तीन श्लोक 3.13, 3.14 और 9.26, तो 3.13 तो हमने पिछले हफ्ते लिया, यज्ञ शिष्टाशिन संतः मुच्यन्ते सर्व किल्बिषे। आज का श्लोक 3.14 अन्नाद भवन्ति भूतानि। 9.26 कौन सा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो ये जो तीन श्लोक भगवद गीता के, इसके द्वारा ये समझ में आ रहा है कि भगवान का टेस्ट क्या है कि नहीं, कि भगवान को क्या पसंद है। तो भगवान इन श्लोकों के द्वारा संकेत कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि उनको क्या पसंद है, वनस्पति भोजन पसंद है। तो आप लोग का प्रश्न होगा, वनस्पति मतलब क्या, अपना डालडा? नहीं, वनस्पति भोजन के दो अर्थ है, फल तथा सब्जी, और आज के श्लोक के अनुसार अन्न। तो इसलिए भगवान ने देखो बहुत कैटेगोरिकली सब लिस्ट दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि एक पत्ता, फल, पुष्प, पानी। भगवान ने, कोई व्यक्ति ये पूछ सकता है कि अरे भगवान को भक्ति भाव से कुछ भी ऑफर किया तो भगवान स्वीकार क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि दो बार भक्ति शब्द इस्तेमाल किया उस श्लोक। तो अगर भक्ति, हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ भगवान ने ये भी इंपॉर्टेंस दिया है कि क्या ऑफर करो, उस भक्ति से क्या ऑफर करो। नहीं तो उस श्लोक में भगवान ये भी बोल सकते थे, अंडम मटनम मासम ये सब ऑफर करो, भक्ति से करो। इसलिए यज्ञशिष्ट का अर्थ दो था, भगवान के द्वारा चखा हुआ, निर्धारित दोनों। तो इसलिए आज के श्लोक से और बाकी दो श्लोक जो हमने अभी देखे उनसे ये समझ में आ रहा है कि भगवान को क्या पसंद है। और हमारे लिए क्या है कि जो भगवान को पसंद है, जो चखा हुआ है, वो हमें खाना, मतलब इसमें कोई दूसरा बाहर का कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यदि यज्ञ में लगना है तो भगवान को अर्पित, और भगवान को क्या अर्पित भगवान ने बता दिया। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया है भूतानि, मनुष्यों के संदर्भ में, तो एक और तरीके से हमारे शास्त्रों में उसमें समझाया है कि स्वर्ग से गिरने वाले जीवात्मा अन्न के माध्यम से पृथ्वी में मनुष्य का जन्म प्राप्त करते हैं। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना होता है, जो कि हमारे ग्रंथों में इसको विस्तार से समझाया गया है कि जब जीव आध्यात्मिक संसार से पतित होता है, च्युत होता है, तो वो सबसे पहले वो ब्रह्मलोक जाता है। ऐसा नहीं क्योंकि इतने हाई गोलोक वृंदावन वैकुंठ धाम से गिरा है तो सीधा इधर ना द्वारका सर्कल पे नहीं आएगा, क्योंकि उसका भी स्टैंडर्ड है भाई, वैकुंठ रिटर्न है। तो इसलिए सबसे पहले सत्यलोक। और क्यों भगवान, हालांकि सत्यलोक ये भौतिक प्लैनेट है, मटेरियल वर्ल्ड में आता है ब्रह्मा जी, लेकिन हाईएस्ट प्लैनेट है मटेरियल वर्ल्ड का, हाईएस्ट प्लैनेट है सत्यलोक ब्रह्मा जी का, सब सत्य बोलते हैं एक तो वहां पे। तो सबसे पहले उधर भेजा जाता है जीव को, और वो भी मनुष्य के रूप में वहां पर, इसलिए कि बहुत से होते हैं अधिकांश 90% वो वहीं से सुधर के वापस चले जाते हैं, अपनी गलती सुधार लेते। तो हम लोग जो यहां पे आए हैं समझ लेना चाहिए, इसलिए भगवान बोलते हैं मनुष्यानाम सहस्त्रेषु दुर्लभ है ये लोग, सब 10% है ये लोग। तो फिर तो अब वहां पर जो भी सत्य लोग, और फिर वहां से नीचे जो भी अलग अलग महर लोग, गंधर्व लोग, स्वर्ग लोग, ये सब किन्नर लोग, अलग अलग लोग जो हैं, स्वर्ग के ही लोग हैं ये सब, अलग अलग हेवनली प्लैनेट्स। तो वहां पर से धीरे धीरे नीचे उतरता रहता है जीव। तो जो लास्ट स्वर्ग लोग है, अब स्वर्ग लोग जो मतलब स्वर्ग लोग में जो लोएस्ट है, जब वहां पहुंचता है वो जीव, तो वहां से यहां कैसे आता है ये प्रश्न है ना, वो बताएगा कि वहां से इधर कैसे आता है, मतलब कौन सा फ्लाइट पकड़ के आता है, कौन से मतलब कौन से कंट्री से एंट्री होता है उसका। तो बताया गया है शास्त्रों में कि एक तो स्वर्ग लोग में कोई मृत्यु नहीं है, जैसे हम लोग यहां पे मृत्यु का अनुभव करते हैं, वहां पे कोई स्मशान भूमि नहीं है कि ना कोई देवता बहुत टाइम से बीमार पड़ा है आईसीयू में है और उसको फिर राम नाम सत्य ले जा रहे हैं कहीं। इंद्रलोक में कोई ऐसे स्मशान भूमि वगैरह नहीं है। तो वहां पर उनका जो वहां का पीरियड है रहने का, वो खत्म कैसे होता है? तो खत्म ऐसे होता है कि जब उसका टाइम आ रहा है, उसके पुण्य क्षीण हो रहे हैं, अभी बस टाइम आ रहा है उसको भेजने का इधर पृथ्वी पर, तो स्वर्ग के जो बाउंड्रीज होते हैं वो अप्सरा वगैरह उसको नृत्य करा करा के वहां ले जाते हैं। तो वो वैसे ही अप्सराओं से इतना मोहित रहता है, तो चाह ले जाओ और सोमरस पिला दिया उसके ऊपर, सोमरस पिला दिया तो अप्सराएं नृत्य करा करा के वहां ले जाते हैं। और फिर वहां एकदम बाउंड्री पे ले जाके उसको धक्का मार देते। तो जब धक्का मार देते हैं तो वो जो लोएस्ट स्वर्गलोक है, वो स्वर्गलोक के नीचे ऐसे पक्षी होते हैं जो कि वेट करते रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कई ऐसे जो होटल्स होते हैं, होटल का जो पिछवाड़ा होता है जहां पे वो लोग सब फेंकते रहते हैं ना खाना बचा हुआ ये वो सब, तो कौवे गिद्ध वगैरह वो सब उधर पीछे वेट करते रहते हैं। बॉम्बे में जो ताज होटल है सामने एकदम अच्छा दिखता है, उसके पीछे जाके देखो सब कौवे बैठे रहते हैं, वो भी ताज का ही खाते हैं। तो वो भी एकदम सीना तान के बोलते हैं आज ताज का डिनर खाया है। तो वैसे ही ये स्वर्ग लोक के नीचे ये लोग सब वेट करते रहते हैं क्योंकि इनको अंदर एंट्री नहीं है, तो ये लोग बाहर वेट करते रहते। तो जैसे ही कोई गिरता है, और बहुत रेयरली कोई वहां से फेंका जाता है, जैसे ही उसको फेंकता है तो ये लोग सब टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, उसको खाने के लिए। तो अब उसको ये जो उसको शॉक लगता है कि अरे भाई मेरे को तो फेंक दिया यहां से, तो उस वेदना में, उस शॉक में और उस पीड़ा में जो वो पक्षी भी उसको मारना शुरू करते हैं, तो वो रोने लगता है। तो जब वो रोने लगता है तो उसके जो प्राण हैं, उसके आंसू जो हैं, आंसू से बाहर आते हैं, और फिर वो वर्षा में मिलते हैं, वर्षा के जल में वो मिलते हैं, वर्षा के जल में उसके प्राण आंसू में मिलकर पृथ्वी धरती के अंदर जाते हैं और फिर धरती के अंदर जाके अन्न के रूप में वो उगता है। और उस अन्न को जब कोई पुरुष खाता है तो उसका वीर्य बनता है। तो कहां से कहां ट्रांसफर हुआ अभी वो समझ में आ रहा है कि आंसू से उसके प्राण निकले, बादलों में से जो बारिश गिरी उसमें से धरती में, धरती से अन्न में, अन्न जो उस पुरुष ने खाया, और ये सब कर्म के अनुसार हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई कहीं पर भी गिर गया तो चलो उसका वहां पे वो अन्न निकला तो वो पुरुष ने खाया, उसका वीर्य बना और उसके बाद में फिर वो मनुष्य के रूप में आता। तो इधर समझ में आ रहा है कि जब भगवान भूतानि कह रहे हैं तो उसके पीछे इतना बड़ा हिस्ट्री है कि उसका कनेक्शन अन्न से कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आज का फोकस मत छोड़ना, अन्न। आज एकादशी नहीं, आज अन्न पे फोकस करो। तो अन्न से कनेक्शन क्या है कि वो अन्न के द्वारा ही वो उत्पन्न होता है, क्योंकि उस अन्न से ही उस पुरुष के अंदर वीर्य उत्पन्न होता है जिसके द्वारा वो मनुष्य की उत्पत्ति होती। तो यहां से समझ में आ रहा है कि आज के श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि इन प्राणियों की भूतानि अन्नात् भूतानि जन्य, कि ये सारे जो हम मनुष्य हैं भूतानि, हमारी उत्पत्ति अन्न से हुई। कैसे? ये जो सीक्वेंस है पूरा स्वर्ग का उससे। अब भवंती का एक और अर्थ या दो अर्थ भवंती के बताए गए हैं। भवंती के दो अर्थ हैं कि उत्पत्ति, कि हमारी उत्पत्ति जैसे कि हमने सुना अन्न के द्वारा, और फिर ये नहीं कि यहां पर आने के बाद फिर अन्न की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती। नहीं, उत्पत्ति का कारण अन्न है और फिर उत्पन्न होने के बाद जो हमारा पालन अन्न करता है। तो कितना महत्वपूर्ण रोल इस अन्न का है। तो भगवान और हमारे आचार्य ये अन्न के ऊपर इतना फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्रैक्टिकली रोज उसको खा रहे हैं, तो हमारा कनेक्शन डायरेक्टली यज्ञ से मुश्किल है होना। तो हमारा कनेक्शन कहां से होता है? अन्न से होता है। इसलिए प्रभुपाद ने भी इस्कॉन की शुरुआत कैसे की? सबसे पहले जाके उनको भगवत गीता नहीं सुनाया, सबसे पहले उनको अन्न, कौन सा अन्न खिलाया? यज्ञ शिष्ट। तो उनका वो कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ, अरे ये जो मैं खा रहा हूं ये बाहर के होटल से अलग है, इसमें कुछ तो विशेष है। और उनको ये अनुभव होने लगा कि इसमें कुछ तो विशेष है, और फिर वो और आगे जिज्ञासा करने लगे। फिर प्रभुपाद ने उनको बताया कि ये अन्न की उत्पत्ति और कैसे हम भगवान को अर्पित कर कर भगवान को थैंक यू बोलते हैं, ये सब इत्यादि। तो भवंती अन्नात् भवंती के दो अर्थ आचार्य बताते हैं, उत्पत्ति और पालन। अब अगली लाइन में ये भगवान ने कहा है पर्जन्यात् अन्न संभव। तो प्रश्न है कि फिर ये अन्न कहां से उत्पन्न होता है? वर्षा, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है। अब इस पूरे इसमें श्लोक में भगवान जो है, प्रभुपाद ने एक लेक्चर इसके ऊपर दिया लॉस एंजलिस में, जिसमें प्रभुपाद कहे कि इस पूरे श्लोक में भगवान ये वैज्ञानिकों के ऊपर थप्पड़ मार रहे हैं जोर से। इट्स अ बिग स्लैप ऑन द साइंटिस्ट, क्योंकि इसके अंदर से कुछ भी वो अपने जेब से आविष्कार कर नहीं दे सकते मनुष्य समाज को, न तो अन्न न वर्षा, यज्ञ तो छोड़ दो। हालांकि है साइंटिफिक वर्स, बट दिस साइंटिफिक वर्स इज अ स्लैप ऑन द साइंटिस्ट बिकॉज इट इज गिवन बाय द सुप्रीम साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। तो अब वर्षा हम आजकल देखें कलयुग में तो दो प्रकार की होती है, अनावृष्टि अतिवृष्टि। अनावृष्टि का अर्थ क्या है? जरूरत से कम। अतिवृष्टि का अर्थ क्या है? जरूरत से ज्यादा। तो ये भी कलयुग का लक्षण है। कलयुग का लक्षण क्या है कि जहां वर्षा की आवश्यकता है क्योंकि यज्ञ नहीं हो रहा वहां पर वर्षा नहीं हो रही, यहां आवश्यकता है, और जहां आवश्यकता नहीं जैसे मुंबई, सब जगह पर कंक्रीट कंक्रीट कंक्रीट, कोई वहां पर खेती फसल नहीं हो रही। कौन सी खेती होती उधर? वो रेलवे ट्रैक के बगल में पालक उगाते हैं वो लोग, और वो भी गटर के पानी से उगाते हैं वो लोग। तो जहां पर, अब जैसे मुंबई शहर में लोग पूछते हैं कि वहां पर लोग ज्यादा यज्ञ कर रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है वहां पर, नहीं, ये जो अतिवृष्टि है ये भी एक प्रकृति का दंड है कि वहां पर जहां पर जरूरत नहीं है तो अभी वो लोग वहां पर क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये सब नट बोल्ट इत्यादि जो फैक्ट्री जहां पे बारिश की कोई जरूरत नहीं है जिसके लिए। तो इसलिए अतिवृष्टि होने के वजह से वो लोग जो नट बोल्ट उत्पादन कर रहे हैं वहां पर पहुंचने के लिए उनको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो वहां के लोगों को पूछो कि आपको बारिश चाहिए? पक गए बारिश, बंद हो जाओ बारिश। किसानों को जाके कहीं गांव में पूछो, वो तो प्रार्थना कर रहे हैं, अल्लाह मेघ दे पानी दे, क्या क्या प्रार्थना करते। तो अब जब हम खाली अगर आज के श्लोक में वर्षा पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि बस सबसे इंपॉर्टेंट क्या है अन्न के लिए, वर्षा नहीं, वो वर्षा भी अपने दो स्वरूप दिखाती है, अनावृष्टि और अतिवृष्टि। जैसे पिछले युगों में वर्षा कब होती थी? केवल रात्रि में, जब वर्णाश्रम धर्म का सही पालन जिस युग में हुआ करता था तो वर्षा केवल रात्रि में होती थी, वो फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए बस, और जहां जरूरत है वहां उस स्थान पर होती थी, और बाकी दिन में सूर्य। तो आजकल क्या होता है कि रात में तो कुत्ते भौंकते हैं और दिन में बारिश होती है। तो ये सब कलयुग का लक्षण है। अब इसलिए भगवान ने खाली पर्जन्य या खाली वर्षा के विषय में नहीं बताया, भगवान बोल रहे हैं यज्ञात भवति पर्जन्यो, कि वो जो वर्षा पर्जन्य है उसका कनेक्शन जब तक यज्ञ के साथ नहीं होगा तो यज्ञ के द्वारा जो वर्षा होगी वो सही अन्न उत्पन्न करेगी, और जो यज्ञ से हटकर जो वर्षा होती है वो एक रूप से हमारे ऊपर दंड है, या तो अनावृष्टि या फिर अतिवृष्टि। तो इसलिए प्रश्न ये है अब कि यज्ञ से ही नियमित वर्षा हो सकती है। अब इसमें एक व्यक्ति मुझे प्रश्न पूछ रहा था, ये बंबई की बात है, तो उसने ये प्रश्न पूछा कि भाई देखिए कलयुग के लिए तो आप कहते हैं संकीर्तन यज्ञ, तो आप लोग सब संकीर्तन यज्ञ कर रहे हैं, उसको प्रचार भी कर रहे हैं इतने लोग, तो मतलब अब बंबई में इतनी बारिश होती इसलिए उसने पूछा, तो आप लोग ये जो इतना चैंटिंग करते हो तो आप लोग थोड़ा एक्सेस नहीं कर रहे यज्ञ जरूरत से ज्यादा, इसलिए इतनी बारिश इसलिए हो रही है। आपने श्लोक के अनुसार बताया कि यज्ञ की वजह से बारिश होती, तो आप लोग ज्यादा जो जप करते हो कीर्तन करते हो तो उसके वजह से बाढ़ वगैरह आ रही है, तो उसका पॉइंट क्या था? अब कलयुग में हमारी विशेषता क्या है कि हम लोग ये ना किन प्रकार ना बहाने ढूंढते हैं जब नहीं करने के। तो उसका पॉइंट क्या था मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पॉइंट पे बोलना चाह रहा। तो उसका पॉइंट फाइनल ये था कि मैं इसलिए जप नहीं कर रहा हूं थोड़ा बैलेंस करने के लिए, आप लोग इतने ऑलरेडी कर रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है, मैं नहीं करूंगा तो थोड़ा नियमित हो जाएगा, वो जो अतिवृष्टि हो रही है उसको हम नियम करेंगे। तो हो सकता है कि कोई ये अपना लॉजिक लगा के क्वेश्चन पूछे कि भाई ज्यादा यज्ञ करने से क्या ज्यादा बारिश होती? नहीं, यज्ञ जब हम ज्यादा करें सही तरीके का करें तो वो यज्ञ उसको बैलेंस करता है, किसको? वर्षा को बैलेंस करता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ कर्म समुद्भव, कि खाली हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो हालांकि चैंटिंग संकीर्तन यज्ञ हमारा है, लेकिन आज के श्लोक में जो भगवान ने कहा है कि हमारा पूरा जीवन जब हम बैलेंस करेंगे एक भगवान को अर्पित करते हुए, तो तब जाकर जो अनावृष्टि और अतिवृष्टि है उसका बैलेंस होगा। मतलब भगवान ये बता रहे हैं कि लोगों को ये लगता होगा कि यज्ञ तो कुछ सिलेक्टिव लोग करेंगे ना, जो ब्राह्मण पुरोहित वगैरह होंगे या जो हरे कृष्णा में दीक्षित होंगे वो लोग करेंगे। इसलिए भगवान लास्ट लाइन जो इतनी इंपॉर्टेंट है आज के श्लोक में, उसमें भगवान कह रहे हैं कि नहीं, सभी लोग अगर अपना नियत कर्म करेंगे तो वो एक कंबाइंड यज्ञ होगा, सम्यक कीर्तन। सम्यक कीर्तन का अर्थ क्या है? कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग, सम्यक कीर्तन। तो कॉन्ग्रीगेशनल नियत कर्म, सब मिल के जब अपना अपना नियत कर्म करेंगे तो वो सही रूप से यज्ञ कहलाया जाएगा, और वो सही वर्षा जो आवश्यक वर्षा है वो वर्षा हमें प्रदान की जाएगी। उस आवश्यक वर्षा के वजह से जो आवश्यक अन्न है वो हमें खाने मिलेगा, और उसके वजह से फिर हम जो जी रहे हैं हमारा जीवन उसके वजह से चलेगा। तो ये इसका सबका कनेक्शन है। अब ये जो हमने पॉइंट लिया था कि यज्ञ से नियमित वर्षा, अनावृष्टि और अतिवृष्टि, तो इसका प्रिंसिपल आचार्य हमारे समझा रहे हैं कि केवल वर्षा से संबंधित नहीं है ये यज्ञ। आज के श्लोक में खाली फोकस किया क्या है? वर्षा के ऊपर, यज्ञ कनेक्टेड टू वर्षा, वर्षा कनेक्टेड टू अन्न। लेकिन उस प्रिंसिपल को यदि हम समझे, अनावृष्टि और अतिवृष्टि के प्रिंसिपल को समझें, तो आचार्य कहते हैं What yagya does, anything which is deficient, it provides, increases the deficient and decreases the surplus. तो जब कोई यज्ञ करता है तो यदि जहां पर अतिवृष्टि हो रही है अगर वहां पर सही यज्ञ होगा तो बारिश कम होगी। तो हो सकता है कि आज के श्लोक के विपरीत दिख रहा होगा, अभी इधर तो यज्ञ करने से बारिश कम हो रही, हाँ क्योंकि वहां पे कम बारिश की जरूरत है, क्योंकि अन्न कम बारिश में मर जाता है और ज्यादा बारिश में भी अन्न मर जाता है। तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है दैट यज्ञ कैन इवन डिक्रीज व्हाट इज नॉट नेसेसरी फॉर अस। जैसे कि हम लोग जब जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान का जब नाम लेते हैं तो दो चीज हो रही, कौन सी दो चीज हो रही? समथिंग इज इंक्रीजिंग विच इज डेफिशिएंट इन अस, एंड समथिंग इज डिक्रीजिंग विच इज सरप्लस इन अस। क्या हो रहा है? अतिवृष्टि अनावृष्टि जप करते समय कि कृष्ण प्रेम बिल्कुल नहीं है, तो जप करने से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो जप करने से जो चीज डेफिशिएंट है वो इंक्रीज हो रहा है। कृष्ण प्रेम इंक्रीज हो रहा है, और सरप्लस में क्या है हमारे पास, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, एकदम होलसेल के भाव में सरप्लस में भरा, कूट कूट के भरा पड़ा है। और इतना ही नहीं, कलयुग के लोग दूसरों को बांट भी रहे हैं, मेरे अंदर जो काम वासना है अरे तुम भी लो थोड़ा देखो। तो ये सब जो टीवी मीडिया ये कर क्या रहे हैं कि कुछ लोगों, इसलिए हम लोग बता रहे थे प्रेरणा में इसकी चर्चा कर रहे थे, सो व्हाट इज टेलीविजन, व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू टेलीविजन व्हाट इज दैट, दैट दे कांट एंजॉय देयर ओन ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग, सो दे वॉन्ट टू सी समवन एल्स इज ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड डिफेंडिंग। तो वो लोग जो वहां पर उनके अंदर जितने अनर्थ हैं उसको वो लोग उसका प्रचार कर रहे हैं, बांट रहे हैं, हमारे तरफ से परोपकार लो, मेरे अंदर इतनी काम वासना है लेकिन उसको मैं अंदर समा नहीं पा रहा हूं, ये तुम भी थोड़ा लो बिना इंटरेस्ट के मेरे तरफ से डोनेशन। तो सरप्लस कलयुग में इसका सरप्लस है, तो हरिनाम संकीर्तन यज्ञ क्या कर रहा है कि इस सरप्लस, इस अतिवृष्टि को रेगुलेट करके कम कर रहा है, कि जो आवश्यक है भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने के लिए, ये अनर्थ भी अर्थ में परिवर्तित हो सकते हैं जब हम इनको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। तो जो हम बलराम जयंती पर चर्चा कर रहे थे कि अनर्थ निवृत्ति और अर्थ प्रवृत्ति, तो यज्ञ क्या करते हैं कि निवृत्ति, इट डिक्रीजेस द सरप्लस और अननेसेसरी थिंग्स फ्रॉम आवर लाइफ एंड इंक्रीजेस व्हाट वी रिक्वायर एंड व्हाट इज डेफिशिएंट व्हिच इज कृष्ण प्रेम। तो ये जो प्रिंसिपल है यज्ञ और वर्षा का कनेक्शन जो है, वो प्रिंसिपल हमें केवल रेन से उसका कनेक्शन नहीं लेना यज्ञ का, आज के श्लोक में तो किया है, लेकिन प्रिंसिपल हमें आचार्य बता रहे हैं कि जनरली हमारे जीवन में नियत कर्मों में हम कैसे ये दो प्रिंसिपल्स को देखते रहें कि अननेसेसरी कम हो रहा है और नेसेसरी बढ़ रहा है कि नहीं, अगर वो हो रहा है तो हम यज्ञ में लगे, और वो है आज के श्लोक के अनुसार यज्ञ कर्म समुद्भव। तो जो नाम संकीर्तन यज्ञ है, अब नाम संकीर्तन यज्ञ हम लोग सब जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप करते हैं, अब इसके विषय में बताया गया है कि इसमें इतनी शक्ति कि न केवल हमारे नियत कर्मों को यह शुद्ध कर रहा है, बल्कि आज के श्लोक के अनुसार जैसे प्रभुपाद हैदराबाद में थे और ये वहां पर 1970s में अकाल पड़ा था वहां, तो प्रभुपाद वहां पर गए और प्रभुपाद ने हरिनाम संकीर्तन चालू करवाया, डिवोटीज को बोला जाके नगर संकीर्तन चालू करो अलग अलग जगहों पर दिन भर रोज। एक दिन में जो अकाल कई समय से पड़ा हुआ था, वर्षा प्रारंभ हुई, तो कईयों को लगा कि अरे भाई बहुत से कारण हो सकते हैं वर्षा होने का, आप कैसे बोल सकते हैं आपके हरिनाम संकीर्तन से वर्षा हो रही। ये समझना आवश्यक है कि एक तो वर्षा हुई नवंबर के महीने में, जो कि वर्षा ऋतु नहीं होती, तो नवंबर के महीने में, और अगर नवंबर के महीने में भी कोई बोल सकता हो सकती है कभी 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 होती है, लेकिन इतनी मात्रा में हुई कि जो आवश्यक जिन किसानों को वर्षा की आवश्यकता थी, जितनी प्रचुर मात्रा में आवश्यकता थी उतनी प्रचुर मात्रा में वर्षा उस महीने में हुई। एक इंसिडेंट तमाल कृष्ण महाराज के जीवन का है। तमाल कृष्ण महाराज, उनको एक हमारा फिजी में मंदिर है, तो वहां पर तमाल कृष्ण महाराज को इनवाइट किया। तो जब तमाल कृष्ण महाराज को इनवाइट किया तो तमाल कृष्ण महाराज ने लेक्चर दिया, एक पब्लिक प्रोग्राम था, और उसके बाद में उन्होंने बोल दिया कि हरिनाम संकीर्तन इज द सोल्यूशन फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, In Fiji we are having a drought, so will your chanting of Hare Krishna bring rains? अभी पब्लिक में पूछा है अभी इन्होंने यही पॉइंट बोला था कि ऑल यू नो प्रॉब्लम्स द सॉल्यूशन इज हरिनाम संकीर्तन. तो तमाल कृष्ण महाराज माइक पे बोले, यस व्हाई नॉट, इफ यू चैंट सिंसियरली देर विल बी रेन्स इन फिजी. अभी बाकी डिवोटीज जो वहां के ऑर्गेनाइजर थे वो लोग सब टेंशन में, बोले ये तो अभी लेक्चर देके जाने वाले हैं वापस अमेरिका. और बाद में ये लोग तो फिर हमको पकड़ेंगे, आपके वो स्वामी जी बोल के गए, क्या हुआ अंदर, तो एक बूंद नहीं गिर रही. तो फिर वो लोग तमाल कृष्ण महाराज को पीछे से बोले कि आपने बोल तो दिया. तमाल कृष्ण महाराज ने बोला, सो ऑल ऑफ यू टुमारो, सबको पूरे ऑडियंस को बोला, ऑल ऑफ यू टुमारो अवर डिवोटीज विल बी परफॉर्मिंग ऑल डे कीर्तन, ऑल नाइट कीर्तन फ्रॉम टुमारो, एंड ऑल ऑफ यू शुड कम एंड ज्वाइन एंड सिंसियरली, दैट इज द की. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सिंसियरली, सिंसियरली यू शुड ऑल चैंट. तो सब लोग अब बाकी कुछ करने के लिए नहीं था, इतने आतुर थे बारिश, ये न के न प्रकार ने, और कुछ काम नहीं आ रहा तो कम से कम चलो इनके हरे कृष्ण से अगर बारिश आ जाए. तो आ गए बहुत से लोग दूसरे दिन, और फिर डिवोटीज को बोला था, महाराज तो चले गए, और डिवोटीज को बोला था, तो सारे डिवोटीज अब हरिनाम संकीर्तन प्रारंभ किया, ये सारे जो लोग आए थे इनके साथ. और डेढ़ दिन तक कंटिन्यूस हरिनाम चला. डेढ़ दिन में वहां पर मूसलाधार वर्षा, और फिर न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस, हरे कृष्णाज हैव बिकम द रेन मेकर्स, ऐसी हेडलाइंस आए, हरे कृष्णाज द रेन मेकर्स ऑफ फिजी. तो ये एक्चुअल एक जो आज के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि यज्ञ के द्वारा वर्षा. तो ये सब कुछ प्रभुपाद के जीवन में और प्रभुपाद के जो शुद्ध अनुयायी हैं उनके जीवन में देखा गया. तो इसलिए आज का श्लोक यदि हम फिर से समझें तो बहुत सिंपल एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन है आज के श्लोक का सिनॉप्सिस. उसका कंक्लूजन ये है, भगवान कह रहे हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि, विशेष रूप से हम सब मनुष्य, हमारी उत्पत्ति और हमारा पालन कहां से? अन्न से हो रहा है. तो केवल एक ही लाइन बोल के भगवान रुक नहीं गए, उसके बाद में भगवान ने कहा कि वो अन्न जिससे हमारी उत्पत्ति हुई है, जिससे हमारा पालन हो रहा है, वो अन्न वर्षा से, पर्जन्य से ही संभव हो सकता है, और वो वर्षा यज्ञ से. और वो यज्ञ क्या है? अर्जुन गांडीव उठाओ, युद्ध करो. तो फाइनली भगवान एकदम फोकस्ड है, वो जैसे कंपास होता है ना, मैग्नेटिक कंपास, उसको कहीं पर भी रखो एक ही दिशा में पॉइंट करता है. तो वैसे भगवान एकदम फोकस्ड, चाहे अन्न के बारे में बता रहे हैं, चाहे यज्ञ के बारे में बता रहे हैं, चाहे वर्षा के बारे में बता रहे हैं, चाहे अतिवृष्टि अनावृष्टि, लास्ट में भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं? गांडीव उठाओ. तो ये है भगवान का एक्सपर्टीज. भगवान का एक्सपर्टीज देखिए कि मतलब अर्जुन को खाने के बारे में बताते बताते बोला वो गांडीव उठाओ. इसका कनेक्शन गांडीव से है तुम्हारा. तुम्हारा रोज का जो खाने का प्रसाद है ना, उसका कनेक्शन गांडीव से, ये युद्ध करने से. तो दिस इज द एक्सपर्टीज ऑफ कृष्णा, दैट समहाउ और द अदर कृष्णा. और गांडीव उठाने का अर्थ क्या है? धर्म की स्थापना करो. तो भगवान का एक्सपर्टीज क्या है कि चाहे आप खाने की बात करो, चाहे आप अपने नियत कर्मों की बात करो, चाहे यज्ञ की बात करो, चाहे तप की बात करो, योग की बात करो, भगवान बता रहे हैं कि कैसे हम उन श्री भगवान से जुड़ सकते हैं. इसलिए भगवान अपने से हम सबको जोड़ने के लिए अवतरित होते हैं, जिनकी जन्माष्टमी हम मनाने वाले हैं इस आने वाले 10 तारीख को, कि भगवान का जन्म और भगवान के जो कर्म हैं उनके द्वारा भगवान क्या चाहते हैं कि हम ये न के न प्रकारेण यज्ञ में लग जाएं, यज्ञ शिष्ट ही ग्रहण करें. और वो भगवान किस प्रकार से अवतरित होते हैं और उनके क्या महत्व है, उनके गुण क्या है, वो भगवान बहुत ही एक स्पेशल तरीके से अपने जन्माष्टमी के दिन वो अपनी कृपा बांटते हैं। तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग जैसे देवकी, वसुदेव, नंद, यशोदा, इतने सारे ब्रजवासीगण और भगवान के पार्षद, वो सब पूर्व तैयारी में लगे भगवान की जन्माष्टमी के लिए, तो उनके पदचिन्हों पर चलते हुए हम भी लगे हुए तो हैं, लेकिन हमारे कॉन्शियसनेस को हम शुद्ध बनाएं। वही सही मायने में हम भगवान का जन्म अपने हृदय में, अपने मन में कर पाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अब अगला श्लोक 3.15, जो कि अगले बुधवार को नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारा गीता कोर्स चल रहा होगा, तो 3.15 में भगवान चर्चा करने वाले हैं कि कैसे वो सर्वगत ब्रह्म है, भगवान श्री कृष्ण कैसे सर्वगत ब्रह्म है। तो ये क्लास अभी हमारा होगा अगले के अगले बुधवार। हरे कृष्ण।